दिन भर 14 मई रविवार आप सभी को निखिल रंजन का नमस्कार। उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। जापान ने कहा 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई मिसाइल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता रहे कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए नए आरोप।
चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को।
मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद 12 स्कूली छात्रों ने की आत्महत्या। संग संग गुनगुनाओगे में आज संगीतकार ओपी नैयर के संगीत का जादू।
सुर साम्राज्ञी मौजूद नहीं है, बावजूद इसके नैयर का संसार उतना ही सुरीला है जितना कि तमाम अन्य संगीतकारों का।
खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। जापान ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने जो ताज़ा मिसाइल परीक्षण किया है उसमें नए तरीके के मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। जापान के रक्षा मंत्री तोमोमी इनाडा ने कहा कि प्योंगयांग ने जो मिसाइल दागी है वो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। उत्तर कोरिया से रिश्तों को लेकर नरम रुख रखने वाले दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे इन ने इस मिसाइल परीक्षण को लापरवाही से उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। वहीं अमरीका ने उत्तर कोरिया पर कड़ाई से प्रतिबंध लागू करने की बात कही है। झारखंड में 128 मामलों और हत्या के 70 मामलों में अभियुक्त नक्सली कुंदन पाहन को ने औपचारिक रूप से समर्पण कर दिया है। कुंदन पाहन के समर्पण के खिलाफ झारखंड के नेता विकास मुंडा धरने पर बैठ गए हैं। कुंदन पर उनके पिता और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के मामले में भी आरोप लगाए गए हैं। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी कहा कि सरकार को समर्पण की अपनी नीति पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नक्सलियों को महिमा मंडित कर लाखों रुपए देना ठीक नहीं है। चीन की सरकार बंदरगाहों, सड़कों और रेल नेटवर्क के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी आर्थिक योजना शुरू कर रही है जिसके तहत वो अरबों डॉलर का निवेश करेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत करीब 124 बिलियन डॉलर का निवेश करने का आश्वासन दिया है। बीजिंग में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि बढ़िया आर्थिक विकास के लिए व्यापार सबसे महत्वपूर्ण इंजन है। हम शांति की राह में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ चलेंगे। हम दोनों पक्षों के फायदे के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करेंगे। हम ऐसे सहयोगी देशों जो गठजोड़ में नहीं है उनके बीच बातचीत के जरिए संबंध बनाएंगे। दोनों को एक दूसरे की संप्रभुता, इज्जत और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था, विकास और एक दूसरे के मूल हितों और चिंताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरा नंबर इस बात का है कि बेल्ट एंड रोड के रास्ते पर हम समृद्धि का रास्ता तय करेंगे। विकास ही सभी समस्याओं की चाबी है। ये थे शी जिनपिंग के शब्द। इस सम्मेलन में कुल 29 देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। इनमें तुर्की और रूस भी शामिल हैं, जबकि जापान और भारत ने सम्मेलन का बहिष्कार किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नेपाल में 20 साल बाद आज स्थानीय चुनाव के लिए वोटिंग पहली बार की गई है। नेपाल के चुनाव आयोग का कहना है कि 3 प्रांतों में इस चुनाव में करीब 70% वोटिंग हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल के कर्णाली इलाके में रिकॉर्ड 80% वोटिंग हुई है। नेपाल के बाकी 4 राज्यों में अगले महीने स्थानीय चुनाव होने हैं। 2006 में गृह युद्ध खत्म करने पर समझौते में स्थानीय स्तर पर मेयर और काउंसिल के चुनाव कराने की सहमति बनी थी। यूरोपीय संघ में कानून प्रवर्तन एजेंसी ने शुक्रवार को हुए साइबर हमले को सबसे बड़ा साइबर हमला बताया है। शुक्रवार को साइबर हमले में 150 देशों में करीब 2,00,000 कंप्यूटर शिकार बनाए गए। यूरोपोल ने आशंका जताई है कि कल यानी कि सोमवार को साइबर हमलों के शिकार लोगों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि छुट्टी के बाद कल सुबह लोग अपने अपने काम पर लौटेंगे। यूरोपोल के साइबर क्राइम सेंटर के प्रमुख स्टीव विल्सन ने बीबीसी से बातचीत में कुछ सलाह दी।
Very much down to ICT department understanding what the threat is.
सूचना और संचार तकनीक विभाग समझते हैं कि हमले का खतरा क्या है। अगर वो जानते हैं कि उनके सिस्टम को पैच यानी कि पैबंद नहीं लगाया गया है तो वो इसे तुरंत लगाए। इससे साइबर हमले के खतरे को कम किया जा सकता है। ये थे स्टीव विल्सन के शब्द। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप रेडियो और bbchindi.com के अलावा फेसबुक पर भी सुन रहे हैं लाइव, और मैं हूं निखिल रंजन। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं। उत्तर कोरिया ने आज फिर मिसाइल परीक्षण किया है। इस परीक्षण के बारे में जापान के अधिकारियों ने बताया है कि मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर ऊंची उड़ान भरने के बाद जापान सागर में गिरा। दक्षिण कोरिया, जापान और अमरीका ने जहां इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, वहीं चीन ने संयम बरतने को कहा है। पूरा ब्यौरा वात्सल्य राय से सुनिए।
दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने के कुछ दिन बाद ही उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जापान के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर पश्चिम कुसोंग से दागी गई मिसाइल 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। इसने 700 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर जापान सागर में गिर गई। जापान के रक्षा मंत्री तोमोमी इनादा ने कहा, मिसाइल ने 30 मिनट की उड़ान भरी और 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। इस पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि इस बात के आसार हैं कि ये एक नई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। हालांकि अभी इसका बहुत सावधानी से विशेषज्ञों के जरिए विश्लेषण करने की जरूरत है। जापानी रक्षा मंत्री तोमोमी इनादा के शब्द। इस मिसाइल की क्षमता फरवरी में हुए परीक्षण की मिसाइल की तुलना में ज्यादा बताई जा रही है। मिसाइल परीक्षण के तुरंत बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की गई। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने इसे जल्दीबाजी का उकसावा कहा है। दक्षिण कोरियाई सेना के प्रवक्ता जियोन दोन दिन ने उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा,
पुखानी उरिये ह्योंगोरुल मुशियागो तोबारुल केसोक हंदाम्यन,
अगर उत्तर कोरिया हमारी चेतावनी की अनदेखी करता है और सैन्य उकसावे की कार्रवाई जारी रखता है तो वे लोग हमारी सेना के हाथों कड़ी सजा झेलेंगे। कोरिया अमेरिका गठबंधन उन्हें पहले ही सावधान कर चुका है। दक्षिण कोरियाई सेना इन उकसावों के प्रति उत्तर कोरिया को कड़ी चेतावनी देती है और उनसे आग्रह करती है कि वो अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को बंद कर दें। दक्षिण कोरियाई सेना के प्रवक्ता के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की मांग की है, जबकि चीन ने धैर्य बनाए रखने को कहा है। उधर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने कहा है कि जापान के इस खतरे को रोकने की कोशिश में उनकी सरकार अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगी। उत्तर कोरिया ने इस साल कई मिसाइल परीक्षण किए हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन पर पहले ही रोक लगा चुका है। इन परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को चौकन्ना करने के साथ ही अमरीका के साथ तनाव बढ़ा दिया है। बीते महीने उत्तर कोरिया के दो मिसाइल परीक्षण नाकाम भी हुए, जिनमें रॉकेट छोड़े जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर धमाका हो गया।
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल परीक्षण किया है और रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी
और साथ ही फेसबुक पर भी। आम आदमी पार्टी में मचा घमासान अभी थमा नहीं है। कई दिनों से अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ अनशन कर रहे कपिल मिश्रा ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नए आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और इस दौरान उनकी जबान भी काफ़ी तल्ख थी। उधर आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन सबके पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हरिता कांडपाल से सुनिए आज पूरे दिन का हाल।
मैं एक बात पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो, और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया शाम तक।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने आज जब एक बार फिर आरोपों का पिटारा खोला तो आवेश में आकर मर्यादा की दीवार लांघ गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर विदेशों से मिले चंदे में हेरफेर करने, उसे चुनाव आयोग और आम लोगों से छिपाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर करोड़ों रुपए का काला धन सफेद करने के आरोप भी लगाए। कपिल मिश्रा ने कहा,
अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों का ठेका दिया वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को।
कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की विदेश यात्रा से लेकर मोहल्ला क्लिनिक तक को भी अपने आरोपों के घेरे में लिया। पिछले कुछ दिनों से अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने के दौरान ही बेहोश हो गए और फिर आनंद फानन में उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इधर आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा के आरोपों को बेबुनियाद बताने के साथ ही ये भी कहा है कि इनमें कुछ भी नया नहीं है और अदालत पहले ही पार्टी को इन मामलों में क्लीन चिट दे चुकी है। पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा,
वो कह रहे विदेशी दौरों पे राघव चड्ढा गया पार्टी का ट्रेजर। अरे भाई, जब पार्टी नहीं भी बनी थी तब भी मैं विदेशी दौरों पर जाता था, उसके बाद भी जाता हूँ, अपने पैसे से जाता हूँ, अपने परिवार वालों के पैसे से जाता हूँ। मुझे इंग्लैंड की सरकार ने इनविटेशन भेजकर बुलाया था, लंदन में एक हफ्ता ठहराया था और वहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों से मिलवाया था। वो कह रहे हैं उसमें पता नहीं काला धन हो रहा है, हवाला हो रहा है, क्या हो रहा है।
कपिल मिश्रा 10 दिन पहले तक दिल्ली सरकार में जल मंत्री थे, लेकिन पद से हटाए जाने के बाद से ही उन्होंने पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी है। कपिल मिश्रा ने नील नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी दी और कहा कि उनके पास बैंक खातों से लेकर तमाम ब्यौरे और सबूत मौजूद हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है। जबकि आम आदमी पार्टी ने नील नाम के इस शख्स को बीजेपी का एजेंट बताया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कपिल मिश्रा के आरोपों के पीछे बीजेपी की साजिश है और उन्हें सामने रखकर दरअसल बीजेपी ही सब कुछ करा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी को नसीहत ना दे तो ही अच्छा होगा।
यही बात भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वही आज कपिल मिश्रा बोल रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो तो लगता है डाकुर गब्बर सिंह अहिंसा पर कोई उपदेश दे रहा है। तुम वही पार्टी हो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा गया था।
पार्टी छोड़ चुके कुछ दूसरे नेताओं ने भी कपिल मिश्रा के लगाए आरोपों को सच बताया है। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सबूतों को कल यानी सोमवार को सीबीआई को सौंपने की बात कही है।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद असफल हुए 12 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां हर साल इस तरह परीक्षा परिणाम आने के बाद बड़ी तादाद में बच्चे आत्महत्या करते हैं। भोपाल से सूर्य न्याजी की रिपोर्ट सुनिए।
मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए, लेकिन नतीजे आने के साथ ही असफल छात्र छात्राओं के मरने का भी सिलसिला चल पड़ा। मरने वाले 12 बच्चों में एक सगे भाई बहन भी हैं, साथ ही भोपाल का एक छात्र भी है जो उम्मीद कर रहा था कि उसे कम से कम 90% अंक मिलने चाहिए। मरने वालों में 12वीं कक्षा के 10 बच्चे हैं। पढ़ाई को लेकर प्रदेश में बड़ी तादाद में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अगर विधानसभा में पेश पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि 685 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। इस बार भी परिणाम आने के बाद छात्र छात्राओं ने मरने के लिए अलग अलग कदम उठाए। किसी ने जहर पिया तो किसी ने फांसी लगाई, वहीं एक छात्रा ट्रेन से कट गई। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी इसकी वजह बताते हैं।
आज के सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, एक बड़ा परिवर्तन, जिसमें पहले से चाहते कि बच्चा पैदा होते ही उसको कुछ ना कुछ बना दिया जाता है, तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या ये बने, उसके टोटल ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उसके खान पान पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है। आप गांव और शहर की तुलना करें तो निश्चित रूप से गांव का बच्चा जो कि परिवार के माहौल में रहता है वो कम डिप्रेस होता है, शहर का बच्चा ज्यादा डिप्रेस होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा अभिभावकों से आपके माध्यम से ये निवेदन है कि बच्चों से एक तो लगातार संपर्क संवाद बनाए रखें, एक्टिविटी पे डेली नजर रखें।
स्थिति यह है कि पिछले 2 दिनों में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन में परेशान छात्रों के 5,000 कॉल आ चुके हैं। बच्चों के साथ ही अभिभावक भी सलाह मांग रहे हैं, लेकिन इस तरह से छात्र छात्राओं की आत्महत्या ने सरकार को भी हिला दिया है। सरकार ने छात्रों की आत्महत्या रोकने के लिए कमेटी गठित की थी, उसकी अनुशंसाओं पर अमल शुरू करवाया जा रहा है। मंत्री दीपक जोशी बताते हैं कि फौरी तौर पर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
विभाग के द्वारा पिछली बार भी जब ये बात आई थी तो हमने निजी स्कूलों संचालकों को बताया कि अपने यहाँ एक काउंसलर रखें जो बच्चों की काउंसलिंग करे। अब इस पे हम थोड़ा सा सख्त वो करेंगे, निर्देशन देंगे कि आपको काउंसलर रखना ही पड़ेगा, ये व्यवस्था भी हम करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन बच्चों से मेरा यही कहना है कि ये हार उनकी जिंदगी की हार नहीं है, एक छोटा सा कारण है जिसके कारण से वो जिंदगी को समाप्त नहीं करें।
सरकार चाह रही है कि बच्चे निराश ना हों, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की रुक जाना नहीं योजना का लाभ उठाएं। इस योजना के तहत फेल हुए बच्चे केवल वही पेपर देकर आगे बढ़ सकते हैं जिसमें वो फेल हुए हैं। सुरेश न्याजी, बीबीसी न्यूज़, भोपाल।
और आइए अब समय हो गया है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओगे का। कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्रा आज आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार ओपी नैयर के संगीत का जादू। पेश कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
संग संग गुनगुनाओगे कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
गीत सुनते हुए ही सारे लोग झूमने लगे होंगे। हम लोग ओपी नैयर की बात कर रहे हैं। ओंकार प्रसाद नैयर, जिन्होंने 50 के दशक में अपनी आमद के साथ एक बिल्कुल नए ढंग का संगीत बना डाला, जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नई सुबह लेके आया था। ओपी नैयर, जिन्हें हम ओंकार प्रसाद नैयर के नाम से जानते हैं, पहला ब्रेक दलसुख पंचोली के फिल्मों में पाते हैं और वो फिल्म थी आसमान। आसमान के साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। ओपी नैयर ने लता मंगेशकर जी को अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था, लेकिन किन्हीं कारणवश लता जी और ओपी नैयर में बात बनी नहीं और ये गीत, जो ओपी नैयर के करियर का पहला ही सबसे महत्वपूर्ण गीत था, राजकुमारी जी के हिस्से आया। ओपी नैयर के आने से हम ये कह सकते हैं, खास करके भारतीय हिंदी फिल्मों के समय के बारे में, कि एक नए युग की शुरुआत हुई जो सीधे लोक संगीत से जुड़ती थी और उस लोक संगीत से जुड़ती थी जो अपने पंजाबी लोक लय का अनुसरण करता था। इसके पहले इस काम को मास्टर गुलाम हैदर बहुत सुंदरता से कर चुके थे, लेकिन गुलाम हैदर के काम को नए ढंग से इनोवेटिव फॉर्म में अगर कोई आगे ले जाता है तो उसमें सबसे प्रमुख नाम नैयर साहब का है। अपने श्रोताओं को हम नैयर साहब की कुछ ऐसी विशिष्ट धुनें सुनाते हैं जिन्हें सुनकर ये समझा जा सकता है कि दरअसल नैयर युग क्या था। जैसे कि हम एसजी बर्मन युग की बात करते हैं या शंकर जयकिशन युग की बात करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर ओपी नैयर क्या परोस रहे थे ये जानना धुनें ही स्पष्ट कर देती है।
गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना।
ठंडी हवा बाल गटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा बाल गटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के।
ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल।
आपने इन गानों को सुना और इसको सुनते हुए ही समझ गए होंगे कि कैसे नैयर के संगीत में रॉक एंड रोल के ड्रम बीट को इस्तेमाल किया गया है, ओपेरा की प्रचलित ध्वनियों को भी उसमें समावेशित किया गया और तमाम सारे वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन के वाद्यों का भारतीयकरण करते हुए ओपी नैयर अपनी धुनें बनाते थे। पश्चिमी शैली का जो वो अनुसरण करते हैं उसमें ट्रम्पेट, हवाईयन गिटार, मैंडोलिन, अकॉर्डियन, चेलो और बांगों को लेकर के उनका काम देखने लायक है। और इन सारी चीज़ों के बीच से उभरता हुआ एक भारतीय किस्म का परिवेश जो पंजाब के खेत खलिहानों से निकल कर आता है, जो सरसों की पीली सुंदर फूलों की मानिंद अपनी महक बिखेरता है, उसको अगर आपको टटोलना है तो बार बार ओपी नैयर के संगीत में लौटना पड़ेगा, बार बार 60 के उस दशक की ओर जाना पड़ेगा पिछली शताब्दी में, जहाँ पर आशा भोसले, शमशाद बेगम और गीता दत्त ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है।
कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले लिए मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
नैयर साहब की धुनों को सुनते हुए कई बार आप इस बात को पकड़ सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी धुनों में एल्विस प्रिस्ले की धुनों का भारतीकरण किया, और ऐसे में अधिकांश गीतों का जो मध्यवर्ती संगीत है या परवर्ती संगीत है उसमें उसकी बघार देखी जा सकती है जब वो अपने ढंग से भारतीय साजों से भी उन्हें सजाते हैं। और इसी समय ये भी देखना चाहिए कि वुड ब्लॉक्स का काम जो उनकी गीतों में कई बार उनका सिग्नेचर बन के निकलता है, जिसमें घोड़े की टापों की आवाज़ें या तांगा और इक्का के चलने की जो बीट है, रिदम पैटर्न है, उसको किस तरीके से ओपी नैयर साधते हैं।
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार,
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। बंदा परवर काम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ।
वुड ब्लॉक्स के इस्तेमाल को देखने के अलावा नैयर की एक जादूगरी ये भी थी कि वो अपने संगीत में शास्त्रीय संगीत की भी छोंक लगाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ढेरों ऐसे गीत ओपी नैयर ने बनाए जिनके लिए बहुत सुंदर रागदारी का चयन किया, और कई बार तो एक फिल्म की कई धुनों को वो एक ही राग पर आधारित करके बना देते थे।
यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे।
दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन।
जिस बीट की मैं बात कर रहा था, घोड़े के टापों की बात में कर रहा था, उसकी शुरुआत भारतीय परंपरा में टप्पा गायकी से आती है। रेगिस्तान और राजस्थान में मौजूद उठहारों का जो संगीत है, जो कबीलाई जाति में उठहार अपने पारंपरिक सबद और टप्पा गाते हैं, उसमें ये चीज आसानी से देखी जा सकती है कि कैसे वहाँ ताल पद्धति पर काम किया जाता है, थोड़े से टुकड़ों को किस तरीके से बार बार बोल बदलते हुए टप्पा में बिल्कुल लय को साधते हुए गाया जाता है। मुझे लगता है कि नैयर साहब के जहन में ये बात भी कहीं मौजूद रही होगी, जिसका वे इस्तेमाल बेहद सुंदर ढंग से अपने गीतों में करते हैं। नैयर साहब को एक बात के लिए और भी जाना जाता है कि उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य, संगीत का साम्राज्य, लता मंगेशकर की उपस्थिति के बगैर रचा है। अकेला संगीतकार जिनके यहाँ महिला पार्श्व गायकों में ढेरों नाम मौजूद हैं, लेकिन सुर साम्राज्ञी मौजूद नहीं है। बावजूद इसके नैयर का संसार उतना ही सुरीला है जितना कि SD बर्मन, रोशन या तमाम अन्य संगीतकारों का।
दिल चाहता है मेरा बहकना।
जो गीत अभी आपने सुन लिया गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजों में, उसको सुन करके आप ये समझ सकते हैं कि लता मंगेशकर की तरह की मिठास भी इन दोनों गायिकाओं ने वैसे ही नैयर के यहाँ घोला है जिस तरीके से मदन मोहन के यहाँ लता जी करती हैं।
चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया,
आज ओपी नैयर के बारे में सुनते हुए आप ये आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनके यहाँ भारतीयता पश्चिम से प्रेरित थी, और कई बार ये भी कहा जा सकता है कि उनका पश्चिम से प्रेरित संगीत दरअसल भारतीय अर्थों में अपनी पहचान बना रहा था, उन पंजाबी अर्थों में अपनी पहचान बना रहा था जिसकी लोकलय कहीं फकीरों के यहाँ, बाउलों के यहाँ और लंगा मंगड़ियारों के यहाँ ढूंढी जा सकती है। आप भारत में ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाएं और किसी प्रांत में चले जाएं तो ठेठ चौपालों पर होने वाला संगीत, दरवाजों पर होने वाला संगीत, कस्बों नगरों से गुजरने वाला संगीत अगर आप सुनेंगे तो उन सब की अधिकांश बीटों में कहीं ना कहीं आपको ओपी नैयर की धुनों की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। इसलिए कहा जा सकता है कि ओपी नैयर की आत्मा भारतीय तालवाद्य और भारतीय लोकलय में बसी हुई थी जिसका उन्होंने अपने ढंग से इस्तेमाल किया, और चलते हुए हम उनकी एक प्रसिद्ध धुन सुना रहे हैं जो ओपी नैयर की सिग्नेचर धुन है।
तो ये था इस हफ्ते का संग संग गुनगुनाओगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। और आइए अब खेल समाचार सुन लेते हैं आदेश कुमार गुप्त से।
जी निखिल, आज IPL 10 में सबकी निगाहें इस बात पर थी कि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राइजिंग पुणे, सुपर जायंट्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच किस तरह का मुकाबला होता है, लेकिन ये तो मुकाबला क्या कहें, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पुणे के सामने जीत के लिए केवल 74 रनों का लक्ष्य था जो उसने सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के नाबाद 34 और राहुल त्रिपाठी के 28 रन की मदद से 12 ओवर में ही केवल एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले किंग्स 11 पंजाब की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर 15.5 ओवर में ही केवल 73 रन पर ढेर हो गई। पंजाब के लिए अक्षर पटेल ने 22 रन बनाए जबकि 7 खिलाड़ी तो 2 अंकों तक भी नहीं पहुंचे, और इस हालत में पंजाब को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार रहे जयदेव उनादकट जिन्होंने 12 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। शरदुल ठाकुर ने 19 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। तो इस तरह से राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। उधर न्यूजीलैंड का दौरा कर रही भारतीय महिला हॉकी टीम आज 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड से 4-1 से हार गई।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। जापान का दावा, उत्तर कोरिया ने ताजा मिसाइल परीक्षण में नए तरीके के मिसाइल का इस्तेमाल किया। झारखंड में बड़े नक्सली नेता कुंदन पाहन ने समर्पण किया। 128 मामले और हत्या के 70 मामले कुंदन पाहन पर चल रहे हैं। चीन की सरकार बंदरगाहों, सड़कों और रेल नेटवर्क के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी आर्थिक योजना शुरू करेगी जिसके तहत $124 अरब का निवेश किया जाएगा। फ्रांस में सबसे युवा राष्ट्रपति के तौर पर इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, कहा कि लौटाएंगे फ्रांस का आत्मविश्वास और सम्मान। नेपाल में 20 साल बाद पहली बार आज स्थानीय चुनाव के लिए मतदान हुआ। शुक्रवार के साइबर हमले को यूरोपोल ने सबसे बड़ा साइबर हमला बताया। शुक्रवार को साइबर हमले के शिकार हुए थे 150 देशों के करीब 2 लाख कंप्यूटर। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया हरिता कांडपाल ने, और आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी साथियों के संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।